आज है 26 अगस्त दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिलाओं को दी हाजी अली दरगाह की मजार के भीतर जाने की अनुमति।
ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सभी महिलाओं को बहुत खुशी है क्योंकि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है।
तुर्की में पुलिस मुख्यालय के बाहर आत्मघाती हमला, 11 लोगों की मौत। अपनी करिश्माई आवाज से लोगों के दिल तक पहुंचने वाले देवकी नंदन पांडे की 15वीं बरसी पर करेंगे याद आज की विवेचना में।
जब अशोक वाजपेयी जी ने पांडे जी का परिचय करवाया कि ये देवकी नंदन पांडे हैं, तो इंदिरा गांधी ने काम छोड़ दिया, कलम नीचे रखी और पांडे जी की ओर देखकर कहा, अच्छा तो आप हैं पांडे जी।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महिलाओं को मुंबई की हाजी अली दरगाह में मजार के अंदर तक जाने की अनुमति दे दी है। पहले महिलाएं सिर्फ बाहर तक ही जा सकती थीं। इसके खिलाफ मुस्लिम महिला आंदोलन नाम की संस्था ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि जहां तक मर्द जा सकते हैं वहां तक औरतों को भी जाने की अनुमति मिले। इसी याचिका पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को दरगाह के भीतर तक जाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। हाजी अली ट्रस्ट का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तुर्की में सिज़्र शहर के पुलिस मुख्यालय पर एक आत्मघाती हमले में 11 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हमला एक ट्रक से किया गया। कुर्द बहुल शहर सिज़्र से मिल रहे वीडियो फुटेज की तस्वीरों में पुलिस मुख्यालय की क्षतिग्रस्त इमारत से धुआं निकलता नजर आ रहा है। कुर्द संगठन पीकेके ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने हमले का बदला लेने की बात कही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास के एक इलाके दराया से हजारों लोग आज शहर से बाहर निकाले जा रहे हैं। सीरियाई सरकार और विद्रोही गुटों के बीच समझौते के बाद करीब 6 साल के बाद लोग सरकार के नियंत्रण वाले इस इलाके से बाहर निकाले जा रहे हैं। समझौते के मुताबिक कई विद्रोहियों को भी निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। दराया की रहने वाली विपक्ष की कार्यकर्ता खोलूद वलीद, जो फिलहाल दक्षिणी तुर्की में है, उन्होंने दराया के हालात के बारे में बीबीसी को ये बताया।
The people who are there, they are worried, but I mean, they didn't mention this in open.
वहाँ जो लोग हैं वो चिंतित हैं, हालांकि उन्होंने ये सब सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा। वो शहर छोड़ रहे हैं और उनके दिल टूटे हुए हैं। उन्हें सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में जाएंगे और सरकार उन्हें वहाँ जाने पर मजबूर कर रही है। ये थे खोलूद वलीद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की उच्चतम प्रशासनिक अदालत ने मुस्लिम महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले स्विम सूट बुर्किनी पर कुछ शहरों में लगे रोक को हटा दिया है। बुर्किनी पर रोक से जुड़े अन्य मुद्दों पर अदालत बाद में फैसला करेगी। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद जिन महिलाओं पर बुर्किनी पहनने के कारण जुर्माना लगाया गया था, वो जुर्माने की राशि को वापस पाने के लिए दावा कर सकती हैं। भारत ने औपचारिक तौर पर पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो नतीजे पर पहुंचने वाला संवाद चाहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के विदेश सचिव की 19 अगस्त की चिट्ठी का जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया कि विदेश सचिव ने पाकिस्तान से कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर आगे की बातचीत संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के आधार पर ही होगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महिलाओं को हाजी अली दरगाह की मजार के भीतर तक जाने की अनुमति दे दी है। पहले इस मजार में महिलाएं बाहर तक जा पाती थीं। महिलाओं के इस मजार के अंदर प्रवेश करने को लेकर साल 2012 में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने प्रतिबंध लगाया था। उसके खिलाफ मुस्लिम महिला आंदोलन नाम की संस्था ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट का आज का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। पूरे ब्यौरे के साथ मुंबई से सुशांत मोहन।
हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मुख्य मजार से कुछ 3 फीट पहले रोके जाने के दरगाह के नियमों को पलटते हुए मुंबई के उच्च न्यायालय ने हाजी अली ट्रस्ट को यह आदेश दिया है कि वो ऐसी किसी भी रोक को खत्म करें जिसमें लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा हो। अदालत ने बीते साल हाजी अली ट्रस्ट द्वारा महिलाओं पर लगी इस रोक के इस्लाम के अनुसार होने का सबूत देने को कहा था, लेकिन ट्रस्ट ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं कर पाया। अदालत में मौजूद जाकिया सोमान के वकील राजू मोरे ने अदालत के इस फैसले को समझाते हुए कहा,
आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हाजी अली का मुद्दा है, जहां औरतों ने अपने प्रवेश की डिमांड की है, वो जायज है। उन्होंने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बात की है कि जो ट्रस्टी थे उन्होंने भारत के संविधान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया था, और वो प्रिंसिपल्स के डिफेंस में आज हाईकोर्ट ने औरतों के अधिकार में फैसला दिया है।
मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही जाकिया सोमान ने कहा,
ये एक ऐतिहासिक जजमेंट है और इससे महिलाओं को न्याय मिलने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, और मुझे बहुत खुशी है और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सभी महिलाओं को बहुत खुशी है, क्योंकि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। करीब 2012 से हम ये संघर्ष लड़ रहे हैं। इससे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भारत की डेमोक्रेसी में उठाया गया है, और मुझे बहुत बहुत खुशी है।
अदालत के फैसले के बाद शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को खुलवाने वाली महिला समाज सेवी तृप्ति देसाई ने भी इसे एक ऐतिहासिक जीत माना।
हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। हम जो है वो महिलाओं को हक मिले, अधिकार मिले, उनको जो दुय्यम स्थान दिया जाता है, ये जो पुरुषी मानसिकता जो लोग हैं, ट्रस्ट की जो दादागिरी थी कि हम महिलाओं को नहीं छोड़ेंगे, हमें लगता है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है और ये सभी महिलाओं की और भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड के आंदोलन की एक जीत है।
हालांकि जब हाजी अली के बाहर मौजूद आम लोगों से अदालत के इस फैसले पर राय ली गई तो अधिकांश लोगों में इस फैसले को लेकर नाराजगी नजर आई।
मनीषा सर, मैं 25 साल से हूँ, मैं टैक्सी भी चलाता हूँ और प्लस कारखाने का काम कर रहा हूँ। मेरा राय ये है कि वो अभी भी जाए, लेकिन दुआ मांगे दूर से। मजार को छूने की हक मेरे हिसाब से नहीं है। लेडीज को तो जनाजे का नमाज पढ़ने का हक नहीं, तुम्हें मजार छूने का हक नहीं है।
इस फैसले पर MIM नेता और हाजी अली ट्रस्ट के समर्थक हाजी रफत ने भी खासा नाराजगी जताई और इसे इस्लाम विरोधी माना।
मेरा ऐसा कहना है कि मजहबी मामले में कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए था, और जब कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, कोई बात नहीं है, इससे ऊंची जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा पूरा यकीन है कि दरगाह के अंदर जहां महिलाओं का जाना मना है, इस्लाम के अंदर मना है, उनको ऐसी इजाजत नहीं देना चाहिए थी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान की कोर्ट में ये कैसे ऐसे अभी फैसले आने लगे हैं, क्योंकि ये सब धार्मिक मामले हैं, इन फैसलों को नहीं देना चाहिए। हाजी अली का जो मसला है उसको इतनी जल्दी इन्होंने कोर्ट का फैसला ऐसा क्यों आ गया, ये मेरी समझ के बाहर है।
फिलहाल मुंबई उच्च अदालत का यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा, बल्कि हाजी अली ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। इन 6 हफ्तों तक यह निर्देश रुका रहेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट हाजी अली ट्रस्ट की अपील को खारिज कर देता है या इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो आज से 6 हफ्ते बाद हाजी अली में मजार तक महिलाएं जा सकेंगी। सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
भारत प्रशासित कश्मीर के 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह नरम दिखाई दिए तो राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सख्त दिखाई दी थी। इन नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 150 लोगों की सूची बनाई गई जिन्हें करीब 50 दिन से जारी अस्थिर माहौल के लिए जिम्मेदार बताया गया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मैंने अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से पूछा कि गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
जी देखें, प्रतिक्रिया तो शुरू से ही है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी 1 महीने से ये कह रहे हैं कि विकल्प ढूंढेंगे। उन्होंने पिछली बार जब दौरा किया था 25 जुलाई को तो कहा था 2 महीने के भीतर ढूंढेंगे विकल्प, तो कल जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्दी आप खुशखबरी सुनेंगे, पैलेट गन का विकल्प जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस पर रिएक्शन तभी हो सकता है जब ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जिस दौरान में यहां रहे 2 दिन, तो उस दौरान भी कोई 80 लोग घायल हो गए और कई लोग पैलेट गन से भी घायल हो गए और एक नौजवान की मौत भी हो गई। तो अभी तक तो ये नहीं है, बल्कि आज भी जो है कई घटनाएं हुई उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में, और अलगाववादियों ने जो श्रीनगर में ईदगाह की तरफ मार्च का आह्वान किया था उसको रोकने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी डाउनटाउन में थे, कर्फ्यू को सख्त किया गया। तो अभी तो उस बारे में कोई ये नहीं है, लेकिन आपने सही कहा कि कल जो रुख था राजनाथ सिंह जी का वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट था जो कि चीफ मिनिस्टर का रुख था, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। और कल से ही हमें सूचना मिली है कि दक्षिणी कश्मीर में कोई गवर्नमेंट ने 150 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है जिसमें अधिकतम दक्षिणी कश्मीर से हैं और जिनको बताया जाता है कि वो जिम्मेदार हैं मोबिलाइज करने में, ये जो अनरेस्ट चल रहा है 50 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं या आंदोलन चल रहा है। और इसके साथ ही NIA की टीम एक भी श्रीनगर पहुंची है कल ही और उन्होंने दक्षिणी कश्मीर में 22 बैंक अकाउंट्स की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बैंक ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है और उनको शक ये है कि सरहद पार से किसी भी तरह से फंड फ्लो हो रहा है जिसको यहाँ हालात को बिगाड़ने में का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से स्थिति तो राजनाथ सिंह जी दो बार आए हैं लेकिन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन बेशक ये है कि अगर वो वादा जो कर चुके हैं कि पैरट गन को बैन किया जाएगा अगर वो होता है तो उसके बाद प्रभाव की किसी तरह की कोई संभावना है।
जी वही ऐसी खबरें आ रही है कि राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है वो दिल्ली पहुंच गई है। कल ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर थे तो अब उनके दिल्ली आने का क्या मतलब बनता है?
जी देखिए वो काफी कोशिश कर रही हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन बोर्ड ले लें, जैसा कि वो एजेंडा ऑफ अलायंस है उनका बीजेपी के साथ, उसमें पाकिस्तान और यहाँ के अलगाववादियों के साथ बातचीत करने का भी जिक्र है। तो और अगर आपको याद होगा कि कोई 15 दिन पहले 8 अगस्त को जब वो दिल्ली गई थी तो वो चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हो लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, वो सिर्फ राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करके वापस आई थी। तो इस बार संभावना है, काफी पुश कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी बात हो और किसी तरह का कंसेशन लिया जाए केंद्रीय सरकार से, किसी तरह का कोई रीच आउट किया जाए या, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें हैं क्योंकि अलगाववादियों की तरफ से पोजीशंस जो है वो हार्डन्ड हुई हैं, वो आजादी से कम किसी भी चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से ये जो पिछले 15-16 दिन से एक डेडलॉक सा चल रहा है बातचीत को लेकर, तो इसको तोड़ना चाहती है महबूबा मुफ्ती। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कंसेशन लेना चाहती है, किसी तरह की कोई राजनीतिक कंसेशन लेने के लिए वो दिल्ली पहुंची है।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। इस बीच भारत ने पिछले 12 दिनों से में दूसरी बार पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के हवाले से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के विदेश सचिव की 19 अगस्त की चिट्ठी का जवाब दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी चिट्ठी में विदेश सचिव ने पाकिस्तान को कहा है कि भारत सरकार इस मसले पर किसी नतीजे पर पहुंचने वाला संवाद करना चाहती है। विकास स्वरूप ने कहा कि विदेश सचिव ने पाकिस्तान से कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर आगे की बातचीत शिमला समझौते, 1999 के लाहौर और 2004 के संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर ही होगी। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना।
BBC इंडिया बोल।
किराए की कोख, मजबूरी या विलासिता, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सरोगेसी या बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं की कोख किराए पर लेने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सरोगेसी को विलासिता बताया और कहा अमीर महिलाएं प्रसव पीड़ा से बचने के लिए दूसरी महिलाओं की कोख किराए पर लेती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें बताइए इस शनिवार 27 अगस्त शाम 7:30 बजे इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए आत्मघाती हमले में करीब 11 लोग मारे गए हैं। ये बम एक ट्रक में रखा गया था जिसमें 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया में आई तस्वीरों में इस इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त देखा जा सकता है। इधर तुर्की के प्रधानमंत्री ने इस हमले के लिए कुर्द के चरमपंथी समूह PKK पर आरोप लगाया है। पूरे ब्यौरे के साथ वैभव श्रीवास्तव।
फिलहाल ये बात स्पष्ट नहीं है कि तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर चिज़रा में हुआ धमाका किसने किया, लेकिन तुर्की का मीडिया इस घटना के लिए प्रतिबंधित संगठन PKK यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार मान रहा है। चिज़रा शहर में PKK और सरकारी सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष के कारण पिछले कुछ महीनों में कई बार कर्फ्यू लगा है। प्रधानमंत्री बिनाली यिल्द्रिम ने PKK पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
आज सुबह चिज़रे के पुलिस स्टेशन के बाहर ट्रक के जरिए एक आत्मघाती हमला हुआ। कई पुलिसकर्मी शहीद हुए, कई लोग घायल भी हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये PKK संगठन का किया हुआ हमला है।
अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रधानमंत्री बिनाली यिल्द्रिम ने यह भी कहा कि इस हमले के बावजूद तुर्की और सीरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रही सैन्य कार्रवाई पहले की तरह ही चलती रहेगी।
हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। सीमा सुरक्षा के मद्देनजर और जनता की सुरक्षा को भी देखते हुए हम ये सैन्य कार्रवाई तब तक करते रहेंगे जब तक तथाकथित इस्लामिक स्टेट और बाकी चरमपंथी समूहों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते।
तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम के शब्द। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र और कई मानव अधिकार संगठनों ने उस खबर की जांच की मांग की थी जिसमें सीरियाई सीमा के पास स्थित चिजरा में 100 लोगों को जलाकर मारने की खबर थी। वहीं तुर्की सरकार उन खबरों को भी गलत बताती आई है कि प्रतिबंधित संगठन PKK पर हमले के दौरान आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। जुलाई 2015 में लगा युद्ध विराम उस वक्त खत्म हो गया था जब PKK संगठन की ओर से तुर्की सेना पर लगातार कई हमले हुए थे। इसके बाद से दोनों तरफ से हुए हमलों में कई लोग मारे गए हैं। PKK 1984 में शुरू हुआ अलगाववादी संगठन है जो कुर्दों के प्रति तुर्की सरकार के भेदभाव और दुर्व्यवहार से परेशान होकर बना था।
तुर्की में आत्मघाती हमला ये थे वैभव श्रीवास्तव। 1990 तक किसी भी भारतीय ने अगर देश या दुनिया की बड़ी घटना का समाचार कभी आकाशवाणी पर सुना होगा तो उसे देवकी नंदन पांडे की खनकदार, गरजदार और रोबीली आवाज़ सुनने का सौभाग्य ज़रूर मिला होगा। अपनी आवाज़ के बल पर पूरे भारत में घर घर में मशहूर होने का करिश्मा देवकी नंदन पांडे ने किया। उनकी 15वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
आकाशवाणी के हिंदी समाचार विभाग से मैं मार्च 1948 से जुड़ा।
एक जमाना था कि रेडियो सेट से गूंजती ये आवाज भारत के जन जन को सम्मोहित कर लेती थी। अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए देवकी नंदन पांडे के समाचार पढ़ने का अंदाज, उच्चारण की शुद्धता, थर्राती हुई रोबीली आवाज किसी भी श्रोता को रोमांचित कर देने के लिए काफी थी। देवकी नंदन पांडे के साथ काम कर चुके मशहूर पत्रकार उमेश जोशी याद करते हैं।
रात 9:45 का बुलेटिन जैसे ही शुरू होता था तो एक ही आवाज सुनाई देती थी, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। बहुत भारी भरकम और बहुत कर्णप्रिय आवाज। और जितने भी बड़े अवसर थे, चाहे खुशी का अवसर हो या गम का अवसर हो, यहाँ तक कि गांधी जी की जब हत्या हुई तो समाचार उन्होंने पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो समाचार उन्होंने पढ़ा, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब समाचार उन्होंने पढ़ा, यानी कितने भी बड़े अवसर रहे हैं सब में पांडे जी को खास तौर से बुलाया जाता था। उनकी ड्यूटी हो या ना हो सबको पता था कि ये देश की आवाज है। पांडे जी कह रहे हैं इसका मतलब पूरा देश कह रहा है।
कानपुर में पैदा हुए देवकी नंदन पांडे ने 1943 में आकाशवाणी लखनऊ से कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1948 में जब दिल्ली में आकाशवाणी की हिंदी समाचार सेवा शुरू हुई तो करीब 3,000 उम्मीदवारों में उनकी आवाज और वाचन शैली को सर्वश्रेष्ठ पाया गया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कई वर्षों तक देवकी नंदन पांडे के साथ काम कर चुके और आकाशवाणी के न्यूज एडिटर के पद से रिटायर हुए त्रिलोकी नाथ कहते हैं,
देवकी नंदन पांडे जी माने ऊंचा माथा, भीतर तक झांकती शफाक आंखें, चेहरे पर झलकता कॉन्फिडेंस, बयान में साफ गोई, सब मिलाकर पांडे जी का शानदार व्यक्ति बनता था। सफेद लंबा कुर्ता पायजामा, पैरों में चप्पल और सर्दियों में इस सब पर एक काली अचकन, बस घड़ी बांधते नहीं थे और कभी पेन भी नहीं रखा, फिर भी ड्यूटी पर हमेशा चाक चौबंद, वक्त के पूरे पाबंद। जैसे ही बुलंद आवाज में कहते थे कि ये आकाशवाणी है, लोग समझ जाते थे कि समाचारों का वक्त हो गया है। काम के प्रति ईमानदारी और सादगी इतनी कि बुलेटिन शुरू होने के वक्त से करीब 5 मिनट पहले ही उठकर स्टूडियो चले जाते थे। नई पीढ़ी के वाचक तो 2 मिनट पहले जाने में भी हेटी समझते हैं।
लखनऊ में मिले उर्दू के अनुभव ने उन्हें हमेशा स्पष्ट समाचार वाचन में मदद की। देवकी नंदन पांडे का मानना था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा जरूर है लेकिन वाचिक परंपरा में उर्दू के शब्दों से परहेज नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ काम कर चुके और खुद अपने जमाने में मशहूर समाचार वाचक रहे अजीज हसन बताते हैं,
आवाज उनकी अलग थी, कॉमन आवाज नहीं थी। दूसरे ये था कि वो उर्दू दां थे, शेर व शायरी का बड़ा शौक था उन्हें, तो इसकी वजह से जो उच्चारण या तलफ्फुज जिसे कहते हैं वो उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि उर्दू वाला जो होता है उसका तलफ्फुज खराब हो ही नहीं सकता। उनको इस चीज का फायदा मिला, उनका जो उर्दू का शौक था उसकी वजह से।
देवकी नंदन पांडे जितने लोकप्रिय आम आदमियों के बीच में थे उतने ही बड़े राजनेताओं और डिसीजन मेकर्स के बीच में भी।
वो बिल्कुल वीआईपी जैसा उनको ट्रीटमेंट मिलता था, कहीं भी जाते थे। स्टाफ आर्टिस्ट की एक एसोसिएशन हुआ करती थी और अशोक वाजपेयी जिसके कर्ताधर्ता थे, स्टाफ आर्टिस्ट को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। 58 साल में रिटायर होते थे और अपने घर चले जाते थे। इस बात को लेकर वो सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ट्रीट किया जाए। इस सिलसिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इनका पूरा एक मंडल मिला। बातचीत चल रही थी, इंदिरा गांधी अपने फाइल में नीची नजरें गड़ाए हुए काम कर रही थी, जब अशोक वाजपेयी जी ने पांडे जी का परिचय करवाया कि ये देवकीनंदन पांडे हैं और ये भी हमारे साथ आए हैं, तो इंदिरा गांधी ने काम छोड़ दिया, कलम नीचे रखी और पांडे जी की ओर देखकर कहा, अच्छा तो आप हैं पांडे जी। यानी कि इंदिरा गांधी भी उनको इतना सुनती रही है, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि जिसमें किसी को भी अगर खबर सुननी है आकाशवाणी ही एक माध्यम होता था।
इसको एक विडंबना ही कहा जाएगा कि देवकीनंदन पांडे की आवाज में उस जोशीले जुमले की कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। क्योंकि उस जमाने में समाचार लाइव होते थे और उन्हें रिकॉर्ड करने का चलन नहीं था। राज्यसभा टेलीविजन के प्रमुख राजेश बादल ने महात्मा गांधी पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री सलाम राष्ट्रपिता में उनकी आवाज जरूर इस्तेमाल की थी।
उनकी अपील पर 15 साल से अधिक उम्र वाले नौजवानों ने पढ़ाई छोड़ दी। सरकारी नौकरियों से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। सार्वजनिक स्थानों पर विदेशी वस्तुओं की होली रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्वराज के लिए फंड इकट्ठा करने की जो शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई थी, वो 6 महीने में ही 1 करोड़ तक जा पहुंची थी।
देवकीनंदन पांडे के बेटे और इस समय रंगमंच और बॉलीवुड के अभिनेता सुधीर पांडे बताते हैं कि घर में भी गलत हिंदी बोलने पर वो उन्हें तुरंत टोक देते थे।
जब मैं स्कूल में था तो सब जानते थे कि भाई ये देवकीनंदन पांडे जी के बेटे हैं। अब उस जमाने में क्योंकि मनोरंजन का साधन रेडियो था और सिनेमा था, टेलीविजन और बाकी चीजें तो कुछ थी नहीं। मेरे फादर जो है वो आवाज से ही पहचाने जाते थे, मतलब उनका नाम लिया और सबको पता चल जाता था कि वो कौन है। तो जब मैं स्कूल में गया, जब वहाँ बच्चे और बाकी लोग हमसे इंटरेक्ट करते थे, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता था कि भाई एक आदमी जो इतना पॉपुलर है और इतना जाना जाता है। और बल्कि ये भी होता था कि हिंदी की क्लास में जब कभी हम गलत वाक्य बोल देते थे या गलत शब्द बोलते थे, सबसे ये कहा जाता था, बताइए साहब देखिए देवकीनंदन पांडे जी के बेटे हो के ये हिंदी इतनी गलत बोल रहे हैं। घर में भी होता था कि अगर कोई शब्द गलत बोल दिया तो पिताजी गलत शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इमीडिएटली वो टोक देते थे कि ये क्या कैसे शब्द बोल रहा है।
देवकीनंदन पांडे का मानना था कि खबर को पूरी तरह समझ लेने के बाद ही पढ़ना चाहिए। मशहूर समाचार वाचक कृष्ण कुमार भार्गव ने न सिर्फ उनके साथ काम किया था बल्कि उनसे गुरु मंत्र भी लिए थे।
मेरा 1960 में न्यूज रीडर के तौर पर सिलेक्शन हुआ था, हिंदी न्यूज रीडर। मुझे लग रहा था कि मैं पहली बार न्यूज जाके पढ़ूंगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरे एक मित्र थे केशव पांडे, जो कि विविध भारती में उस समय काम करते थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा, केशव जी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है एज न्यूज रीडर, तो मैं जानना चाहता था कि ये न्यूज कैसे पढ़ते हैं। मेरे सामने वाली कुर्सी पर ही एक शख्स बैठे थे, कुर्ता पजामा पहने हुए, तो उन्होंने कहा कि इनसे मिलो। मैंने नमस्कार किया, कहले कि ये हैं देवकीनंदन पांडे, ये तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। मैं एकदम खड़ा हो गया, मैंने कहा आपकी आवाज सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ, तो आप बताएं कि मैं क्या करूँ। कहले कि भार्गव, समाचार कोई कला नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ो उसको समझ कर पढ़ो। ये गुरु मंत्र मैंने उनसे सीखा और जीवन भर में उसी को अपनाता रहा।
देवकीनंदन पांडे के व्यक्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू था कि वो अपने पास न तो कलम रखते थे और न ही घड़ी बांधते थे।
अक्सर मैंने देखा लगभग सभी न्यूज रीडर्स मार्किंग करते हैं कलम से कि कहां पर मुझे पॉज देना है, कहां बड़ा पॉज देना है, कहां पर स्ट्रेस देना है, कहां मुझे थोड़ा फास्ट पढ़ रहा है, कहां थोड़ा स्लो होना है, इस तरह की मार्किंग करते हैं। लेकिन पांडे जी ने कभी मार्किंग नहीं की, कलम ही नहीं रखते थे वो अपने पास। लेकिन जब स्टूडियो में जाते थे वो, तो बहुत तल्लीन होकर पढ़ते थे और अंगूठा और पहली उंगली दोनों को इस तरह से मिलाते थे जैसे उन्होंने कलम पकड़ी हुई है, और पढ़ते पढ़ते हवा में मार्किंग करते थे। कहीं कोमा है तो कोमा लगाते थे, कहीं पर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाते थे, कहीं अगर स्ट्रेस है तो फिर वो दो लाइनों का एक मार्किंग करते थे। तो हवा में ही करते रहते थे, और कहीं किसी भी मौके पर मैंने उनको फंबल करते हुए नहीं देखा। अगर कोई गलती है भी तो इतनी खूबी से सफाई से उसे संभालते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि उस गलती को पांडे जी ने संभाला है।
एक बार उनके समाचार संपादक ने यासिर अराफात के बारे में खबर लिखते हुए वाक्य पूरा ही नहीं लिखा और उसे पांडे जी को पढ़ने के लिए दे दिया।
इस बारे में पूछे जाने पर यासिर अराफात ने बस इतना लिखकर वो सेंटेंस छोड़ दिया गया। एडिटर को लगा कि मैं स्टूडियो में जाऊंगा, पांडे जी कोई दूसरा समाचार पढ़ रहे होंगे, इस बीच में सेंटेंस पूरा कर दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए। और जब पांडे जी के सामने हो गया तो यहां तक लिखा हुआ था, इस बारे में पूछे जाने पर यासिर अराफात ने पांडे जी ने कहा कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया
बगैर पलक झपकाए,
बिल्कुल बिना रुके। कोई कह ही नहीं सकता था कि यह सेंटेंस अधूरा था और पांडे जी ने पूरा किया है। और उसके बाद फेडर ऑफ किया और कहा बे भूतनी के, इसको कम से कम पूरा तो कर देते। ये उनका तकिया कलाम था। इसी तरह से एक बार भारत का स्कोर 291 था, गलती से 219 हो गया। पांडे जी ने पढ़ते पढ़ते उसको ठीक किया, मतलब 291 पढ़ा और फिर वही हुआ, फेडर ऑफ किया और उन्होंने कहा भूतनी के कम से कम इसको एक बार चेक तो कर लेते। तो ये उनका स्टाइल था, वेल रेड, एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया।
न्यूज रूम में उनकी मौजूदगी का एहसास कमरे के अंदर से आ रहे ठहाकों से होता था। उन ठहाकों से न्यूज रूम के बाहर खड़े लोग समझ जाते थे कि पांडे जी अंदर हैं।
दरअसल में उनका बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर रहता था, चाहे नया हो या पुराना हो। उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं थी, वो ईगो नहीं था या अपने को सीनियर समझना, ये सब बातें नहीं थी। और बस वो चूंकि हंसी मजाक वाले आदमी थे, तो जो भी हो, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो या उनके बराबर का हो, वो असल में सबको पता था कि ये दिल के साफ आदमी हैं। इनके अंदर कोई छलावा दिखावा या वो जो अक्सर दफ्तरों में चलती है पॉलिटिक्स बाजी, वो सब कुछ नहीं था पांडे जी में। पांडे जी को कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस अपना शेर व शायरी से मतलब था उन्हें, और थोड़ा वो ड्रिंक करने का शौक था, तो वो उनकी एक वीकनेस ही समझिए। लेकिन ये है कि उसकी वजह से वो उनका बुलेटिन पर कोई असर नहीं पड़ता था।
समाचार वाचन में सरल शब्दों के इस्तेमाल को देवकी नंदन पांडे बहुत महत्व देते थे। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था,
बिफोर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आई मीन टू से, द लैंग्वेज दैट वाज बीइंग यूज्ड इन द नेम ऑफ हिंदुस्तानी वाज प्योर एंड सिंपल व्हाट यू कॉल पर्शियनाइज्ड।
आजादी से पहले आकाशवाणी में हिंदुस्तानी के नाम पर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो थी गूढ़ और फारसी नुमा उर्दू। वो इतनी मुश्किल होती थी कि अशिक्षित मुस्लिम भी उसे नहीं समझ पाते थे। इस नीति का बहुत विरोध हुआ और सभी प्रमुख हिंदी लेखकों ने ये धमकी दे दी कि वो आकाशवाणी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन विभाजन के बाद हालात बदले। शुरू में इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोग बहुत मुश्किल संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। हमारे पास श्रोताओं की शिकायत आती थी कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने बुलेटिन में करते हैं वो हमारे सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं। इसके बाद हमने भाषा को सरल करने का बीड़ा उठाया ताकि इसे हर कोई समझ सके।
देवकी नंदन पांडे ने कई रेडियो नाटकों में भाग लिया। उन्हें आधारशिला फिल्म और लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल तमस में भी अपने अभिनय के जलवे दिखाने का मौका मिला। खाने पीने का भी उन्हें बहुत शौक था। उनके बेटे सुधीर पांडे कहते हैं,
के खाने का उनको शौक था, बढ़िया गोश्त बना हो अगर कहीं, और मतलब हर तरह की वैरायटी जो उस जमाने में होती थी कि भाई चलो आज बढ़िया मौसम है, आज ये है, तो यार आज कुछ गोश्त खाने का मन कर रहा है, आज ये बनाया जाए, और आज ये उनका रहता था। और वो रम के शौकीन थे, लेकिन बहुत ज्यादा होटलों में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाके बहुत ज्यादा वो नहीं, उनको एक अपनी तन्हाई में बैठ के आराम से, और उसी में वो अपना पढ़ते भी रहते थे। कोई उपन्यास पढ़ लिया, कोई कविताओं की किताबें पढ़ ली, शेर व शायरी की किताबें उनके सिरहाने हमेशा रहती थी।
देवकी नंदन पांडे को हमेशा समाचार प्रसारण की विधा के शिखर पुरुष के रूप में याद किया जाएगा। उनकी 15वीं बरसी पर मजाज का एक शेर याद आता है, छुप गए वो साजे हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना दोबारा विश्व भारती में सुबह 8 बजे सुन सकते हैं और घटना चक्र में सुनेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के हाल और भारतीय एथलीट जेशा अस्पताल में। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही, 9:30 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।